नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा मास कम्युनिकेशन, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण। जी हाँ, आपका लेसन नंबर 16 है और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री सुनील कुमार जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण।
नमस्कार सभी श्रोताओं को और कार्यक्रम को सुनने वाले प्रिय छात्रों को, लर्नर्स को, जो NIOS के इस माध्यम से जुड़ के अपनी पाठ्य पुस्तक यानी कि जनसंचार विषय कोड 335 के अंतर्गत पाठ संख्या 16 में आज हम जो बात करेंगे वह विषय है टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण। देखिए, क्योंकि आप कक्षा 12वीं में इस विषय को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जानना होगा कि इस विषय में आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि मीडिया के विषय की जब हम बात करते हैं या मास कम्युनिकेशन विषय की जब हम बात करते हैं तो बड़ा जो एक स्पेस है यहाँ पे मीडिया जगत में वो टेलीविजन माध्यम है, और वह बड़ी ऑडियंस को या बड़े दर्शक समूह को सूचनाएं देने का, भेजने का कार्य करता है। भले ही सोशल मीडिया आने के बाद में टेलीविजन का जो स्वरूप था उसमें व्यापक बदलाव आए हों, यह संभव है कि उन व्यापक बदलावों का जो मूल केंद्र है वह वही है जो एक टेलीविजन चैनल को चलाने के लिए बनाया गया था। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण एक बड़े स्टूडियो में अभी तक किए जाते रहे हैं, उसी पद्धति पर आगे चलते हुए छोटी छोटी वीडियो निर्माण का कार्य वर्तमान में छात्र या फिर निर्माणकर्ता मोबाइल के माध्यम से भी उन सभी कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम इसकी पुष्टि करता है और आपको जानना चाहिए कि आखिरकार टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और किस तरीके से हम लोग विभिन्न विषयों पर आधारित टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण की पृष्ठभूमि क्या है, या क्या कभी आपने कार्यक्रमों के अंत में टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले निर्माण प्रक्रिया में लगे लोगों के नाम पर ध्यान दिया है? कार्यक्रम के अंत में टेलीविजन के पर्दे पर आने वाले नामों की ओर देखने की फिक्र कभी आपने नहीं की होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब ये जो कार्यक्रमों के निर्माण हैं और कार्यक्रम निर्माण में नाम आने की जो बात है, तो आप जब टेलीविजन कार्यक्रमों को देखेंगे, जब विशेष विषय पर आधारित विशेष टेलीविजन कार्यक्रम जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कार्यक्रम के अंत में आपको नामों की श्रृंखला, कौन निर्देशक है, कौन किसने उसकी पटकथा लिखी, किन किरदारों ने विभिन्न पात्रों में अपना जो है अभिनय किया, और किस प्रोड्यूसर ने उस कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया, यानी कि कौन निर्माता था, कौन डायरेक्टर था, कौन डायरेक्टर मतलब निर्देशक था, का और बाकी की अन्य जो भी किरदार है, पटकथा लेखक कौन था, इन सब चीजों की जानकारियां हमेशा दी जाती रही हैं। हाँ, लेकिन इससे इतर जब हम टेलीविजन को जर्नलिज्म के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर यह पूरी तरीके से एक भिन्न प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। यहाँ पे सभी मीडिया हाउस में जब एंकर आता है तो वह अपना नाम स्वयं लेता है, ना कि उसका नाम कार्यक्रम के बाद में स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो ये एक मोटा मोटा अंतर इसमें दिखाई देता है। मान लीजिए कि एक दर्शक के तौर पर टेलीविजन देखते हुए आप निर्माण की जटिलताओं से अनजान रहते हैं, लेकिन पेशेवर टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण यह स्टूडियो में किया गया हो या बाहर, एक जटिल रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें बहुत से लोग तथा मशीनें, ढेर सारी जानकारियां तथा संदेश वृहद संख्या में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अब इस पाठ में क्या क्या आप जानेंगे और मैं क्या क्या बताने में संभव रहूंगा, थोड़ा उस पर भी हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। वह है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। नंबर एक, टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के 3 चरणों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आप यह समझ पाएंगे कि टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण 3 अलग अलग वर्गों में कैसे कार्य करता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या। तीसरा बिंदु है निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों की पहचान। अंतिम बिंदु है निर्माण में लगे महत्वपूर्ण पेशेवरों के कार्यों का वर्णन। तो ये मोटी मोटी कुछ कुल 4-5 बातें हैं जिसके इर्द गिर्द हमारा जो चर्चा है वह चलेगा, घूमेगा, और हम इन सभी विषयों पर जोर देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम निर्माण के चरण, यह हमारी चर्चा का आज पहला बिंदु है। आइए हम उस स्थिति को सोचें जब आप कुछ लोगों की प्रतीक्षा रात्रि भोज के लिए कर रहे हों। आप क्या तैयारियां करेंगे, यह प्रश्न आपके और हमारे सभी के बीच में रहता है, और ज्यादातर घर में रहने वाली स्त्रियों के लिए, गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए यह प्रश्न और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। सबसे पहले आपको खाने के व्यंजनों का निर्णय करना होगा, फिर आप सभी सब्जियां तथा व्यंजन बनाने के लिए जरूरी अन्य सामग्री की व्यवस्था करेंगे। यह सामग्री खरीदने के लिए आपको बाजार जाना पड़ सकता है, सही समय पर सही मात्रा में मिलना होगा। खाना बन जाने पर इसे परोसने की बारी आती है, यानी कि जब आप सामान बाजार खरीदने के लिए बाजार जाएंगे, सारी व्यवस्था के बाद आप खाना बनाना चालू करेंगे, इसमें सभी सामग्रियों को सही समय पर सही मात्रा में मिलाना होगा। खाना बन जाने पर इसे परोसने की बारी आती है, जब आप विभिन्न तैयार व्यंजन सजाकर अलग अलग बर्तनों में रखते हैं, तब वह खाने की मेज पर परोसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह आपने देखा कि विभिन्न व्यंजन बनाने के 3 मुख्य चरण हैं। पहला चरण, जिसे हम कहेंगे खाना बनाने के लिए जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना। दूसरा चरण, खाना बनाते हैं और तीसरा चरण में आप इसे खाने की मेज पर परोसते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए जब हम टेलीविजन कार्यक्रम बनाने की बात करेंगे, निर्माण की बात करेंगे, तो उसमें भी उसको भी ऐसे ही तीन चरणों में विभाजित किया गया है। इस पूरी कहानी को इस पूरे उदाहरण को समझाने के पीछे आपको मूल रूप से यह बताना था कि टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है और आप उसे उन आवश्यक चरणों को टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के अनुरूप समझ सकें। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, बेसिक चीज समझ में आई होगी कि कैसे टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। तो अब आइए आगे बात करते हैं कि मान लीजिए या आप कल्पना करिए कि आपको एक टेलीविजन कार्यक्रम बनाना है। इसी प्रकार पहले आप कार्यक्रम निर्माण में आवश्यक सामग्रियां जुटाएंगे, दूसरा चरण में आप निर्माण प्रक्रिया में संलग्न होंगे और तीसरे में टेलीविजन पर प्रस्तुतीकरण के लिए आप उत्पाद को चमकाएंगे। इस प्रकार हम समूची निर्माण प्रक्रिया को तीन चरणों में बांट सकते हैं और वे तीनों चरण क्या हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, वह हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको इन उदाहरणों से टेलीविजन निर्माण या टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण की मुख्य तीन अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी, जैसे हम हिंदी में निर्माण पूर्व की अवस्था, निर्माण की अवस्था और निर्माण पश्चात की अवस्था के रूप में जानते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्री प्रोडक्शन, यानी कि निर्माण पूर्व की अवस्था है क्या और ये कैसे कार्य करती है। देखिए, थोड़ा सा समझिए कि इस चरण में वह सब कुछ शामिल है जो आप स्टूडियो में प्रवेश से पहले या शूटिंग स्तर पर जाने से पूर्व करते हैं। इसमें विचार मंथन, अनुसंधान, स्क्रिप्ट लेखन, निर्माण में सहयोगी सदस्यों तथा कलाकारों से चर्चा, उपकरणों को जुटाना, वीडियो ऑडियो टेप या फिर कार्ड को अपने आवश्यकता अनुसार रखना, शूटिंग के सेट की सामग्रियां, प्रॉपर्टी, वस्त्र, कॉस्ट्यूम, सेट सज्जा या शूटिंग स्थल, लोकेशन की खोज तथा वीडियो संपादन के लिए बुकिंग, सभी कुछ शामिल होता है। मतलब कि इस प्री प्रोडक्शन के अंदर में निर्माण की पूर्व अवस्था में हम लोगों का बड़ा काम क्या होता है, हम लोगों का काम होता है कि निर्माण के पूर्व में हम लोग तय कर लेते हैं कि निर्माण के अंत तक, इवन निर्माण के अंत मतलब निर्माण कार्यक्रम निर्माण होने के बाद उसको विज्ञापन के माध्यम से उस कार्यक्रम के प्रचार तक की पूरी व्यवस्था हम लोग इस प्री प्रोडक्शन में कर लेते हैं। इस प्री प्रोडक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, निर्माण पूर्व की अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। इन सब के लिए पूर्व योजना की आवश्यकता होती है। यह बहुत जरूरी है कि आपको इच्छित परिणाम प्राप्त हों। अगर आपके पास रसोई में सारा कच्चा माल तैयार है तो आप खाना आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह अगर कार्यक्रम निर्माण के इस चरण में आपने अच्छी तरह कार्य किया है, काम किया है, तो अन्य दो चरण आसान तथा निर्वह योग्य बन जाएंगे। तो हमारा एक जो चरण था निर्माण, वह था निर्माण पूर्व की अवस्था, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम चलते हैं निर्माण की अवस्था यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चरण में आप स्टूडियो फ्लोर या लोकेशन पर होते हैं और या तो शूटिंग कर रहे होते हैं या उसके लिए तैयार होते हैं। इसकी तुलना आप उस स्थिति से कर सकते हैं जब आप रसोई में खाना बना रहे हों। इसमें सभी सुविधाओं की व्यवस्था, अदाकारों तथा क्रू, निर्माण में संलग्न लोगों के साथ तालमेल, भीड़ नियंत्रण, बिना व्यवस्था के शूटिंग तथा उस समय उस स्थल पर आई अन्य किसी समस्या का समाधान सम्मिलित है। यह हुआ निर्माण की अवस्था। निर्माण पश्चात की अवस्था पर हम लोग बात करेंगे। निर्माण पश्चात की अवस्था क्या है? निर्माण पश्चात की अवस्था पे जब हम बात करते हैं, जब हमारा कार्यक्रम बनके तैयार हो जाता है, यह कार्यक्रम निर्माण का तीसरा चरण होता है। इसमें आप कार्यक्रम को एक अंतिम आकार दे देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप व्यंजन सजाकर खाने की मेज पर परोसते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग, दृश्यों को समुचित लंबाई में काटना, दृश्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना, दृश्यों का या लिखित सामग्री टेक्स्ट कैप्शन को इच्छित प्रभाव देना, कमेंट्री रिकॉर्डिंग, संगीत गीत रिकॉर्डिंग तथा समूचे कार्यक्रम को अंतिम रूप से संयोजित करना शामिल है। तो बच्चों और प्रिय श्रोताओं, आज हमने अभी तक जो बात करी, वह बात करी कार्यक्रम निर्माण के तीन चरणों के बारे में। कौन कौन से वह तीन चरण हैं? वह तीन चरण हैं निर्माण की पूर्व अवस्था, कार्यक्रम निर्माण की अवस्था और कार्यक्रम निर्माण के बाद की अवस्था, जिसको हम क्रमशः प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को मैं आपके साथ साझा करता हूं। जैसे अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आया कि निर्माण प्रक्रिया को विभाजित किया जा सकता है और आपको इसका उत्तर एक शब्द में लिखना है, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? जी हाँ, आप लिखेंगे निर्माण प्रक्रिया को तीन भागों में या तीन चरणों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विचार मंथन अंग है। क्या है विचार मंथन अंग? मान लीजिए क्या है, अब आपके पास में अभी तक जो हमने पढ़ा, वह पढ़ा कि हमारे पास तीन तरीके का निर्माण प्रक्रिया होती है। प्री प्रोडक्शन, निर्माण पूर्व की अवस्था है विचार मंथन, निर्माण की अवस्था है विचार मंथन, निर्माण पश्चात की अवस्था है विचार मंथन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा निर्माण पूर्व की अवस्था। वहीं से कार्यक्रम निर्माण के ऊपर विचार किया जाता है, उसे मंथन किया जाता है और उसको जमीन पे उतारा जाता है। अब कुछ और प्रश्नों पे मैं बात कर लेता हूँ और फिर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है, इसमें एक प्रश्न आता है कि निर्माण पूर्व चरण में समस्त पूर्व शामिल हैं। निर्माण पूर्व चरण में समस्त पूर्व क्या शामिल हैं? सोचिए। तो आपका जो उत्तर होगा वह ये होगा कि निर्माण पूर्व चरण में आपके पास में मंथन, अनुसंधान, स्क्रिप्ट लेखन, निर्माण में सहयोगी सदस्य, कलाकारों से चर्चा, उपकरण, वीडियो ऑडियो, आउटडोर शूटिंग का शेड्यूल, वस्त्र, कॉस्ट्यूम, सेट सज्जा और संपादक के लिए बुकिंग सभी सम्मिलित, वीडियो संपादन के लिए बुकिंग सभी सम्मिलित होता है। आप पूरी तरीके से इस चरण में ये तैयारी कर लेते हैं कि हमें कार्यक्रम की शुरुआत करनी है और बेसिक चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। आइए अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और जिस पे हम लोग बात करेंगे, टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया। तो यह प्रक्रिया कैसे होती है और इस प्रक्रिया में किन किन चीजों की को की उपयोगिता है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि खाना बनाने के क्रम में हमें विभिन्न सामग्रियां जैसे सब्जियां, बर्तन, चाकू, मसाले, पानी, तेल आदि की जरूरत पड़ती है। इसी तरह टेलीविजन कार्यक्रम बनाने में हमें विभिन्न उपकरणों और उन्हें चलाने के लिए व्यक्तियों की जरूरत एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम के निर्माण के लिए पड़ती है। आइए अब हम निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक उपकरणों पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि हमारा जो कार्यक्रम निर्माण है वह 3 चरणों में होता है। अब हमारा जो बिंदु है जिस पर हमें केंद्रित करना है कि आवश्यक उपकरणों की चर्चा, इसके बिना आप टेलीविजन कार्यक्रम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कल्पना करिए कि आपको कैनवस पर कुछ पेंट करना है। निश्चित रूप से आपको एक ब्रश, रंग और पैलेट की जरूरत होगी। इसी प्रकार अगर आप एक अच्छा टेलीविजन कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो आपको कैमरा, लाइट, साउंड रिकॉर्डिंग आदि कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी। हम मूलभूत निर्माण तत्व को विभिन्न निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे पहला है कैमरा। अब कैमरा जो है वह पूरी निर्माण प्रक्रिया के केंद्र बिंदु में है। अगर आपके पास कैमरा नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन यानी टेलीविजन प्रोडक्शन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बिना टेलीविजन के, बिना कैमरे के टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण का कोई भी कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो मोबाइल फोन का ही कैमरा क्यों ना हो। कैमरा होना नितांत आवश्यक है, चाहे वह स्टील कैमरा क्यों ना हो। तो कैमरा जो है सबसे आवश्यक यंत्र हमारे बीच में अगर कुछ है तो वह है कैमरा। किसी एक या प्रत्येक निर्माण का मूलभूत उपकरण है कैमरा। हमारे जीवन में भी हमें से अनेक या हमारे मित्रों ने विभिन्न आयोजनों का फोटो लेने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया होगा। अगर आप किसी कैमरे को ध्यान से देखें तो आपको इसमें एक लेंस दिखेगा। यह लेंस देखे जा सकने वाले समूचे माहौल के एक हिस्से का चयन करता है और इस तरह एक छोटा दृश्य या बिंब बनता है, छोटा दृश्य या बिंब बनाता है। कैमरा मुख्यतः दृश्य बिंब को जिस प्रकार लेंस प्रक्षेपित करता है उसी प्रकार के विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसे वीडियो सिग्नल कहते हैं। तो आप समझ में आया कि कैमरा किस तरीके से कार्य करता है। और अभी हम लोग बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश यानी लाइट, और लाइट टेलीविजन कार्यक्रम के निर्माण में क्या भूमिका निभाती है, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। बिना प्रकाश के आप टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण की रूपरेखा के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। और लाइट मूलतः रोशनी से ही हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे घरों में जो लाइटें होती हैं, जो प्रकाश होता है, सूर्य से निकलने वाली रोशनी होती है। लेकिन टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण में लाइटों का अपना अहम योगदान आखिर क्यों है, क्यों लाइट के ऊपर इतना फोकस किया जाता है, प्रश्न इस बात का है। इस बात का प्रश्न नहीं है कि लाइट टेलीविजन निर्माण में कार्य करती है, लेकिन टेलीविजन निर्माण में लाइट क्या कार्य करती है, इसको आपको थोड़ा गहनता से समझना होगा। अगर मैं आपको यह बता दूं कि लाइट जो है 3 प्रकार की होती है और उसे की, फिल और बैक के नाम से जाना जाता है, इसे जानने से क्या होगा, यह आपकी पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है। लेकिन जो अहम बात है उसकी तरफ चलते हैं। मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूं और आपको इससे थोड़ा लाइट के बारे में समझने में आसानी होगी। जैसे आपने मध्यम रोशनी में कुछ देखने का प्रयास किया ही होगा। इसे देखना मुश्किल होता है। अब सोचिए कि आप अंधेरे में देख रहे हैं। आप सोचेंगे कि अंधेरे में कैसे देखा जा सकता है। मानवीय नेत्र की तरह कैमरा भी बिना एक निश्चित मात्रा के प्रकाश के नहीं देख सकता। हर किसी की, चाहे वह इक्विपमेंट है चाहे वह व्यक्ति है, उसकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो मानवीय नेत्र की जिस तरह से सीमा है, उसी तरह कैमरे की भी सीमा है। यही टेलीविजन निर्माण में प्रकाश की भूमिका आती है। किसी वस्तु या व्यक्ति की लाइट के तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब देखिए, लाइट के तीन मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसको आप समझ लीजिए। पहला, तकनीकी रूप से स्वीकार्य चित्र प्राप्त करने के लिए टेलीविजन कैमरे को उचित प्रकाश उपलब्ध कराना। जो कैमरा आपका लगा हुआ है और आपका जो सब्जेक्ट है, वह कहीं ऐसी जगह पे फिल्माया जा रहा है जहां पर रोशनी कम है। मान लीजिए कि आप एक डायरेक्टर हैं और आपने एक दृश्य के बारे में सोचा है कि वह दृश्य बेसमेंट में लिया जाएगा। बेसमेंट का मतलब है कि अंधेरा, और अंधेरे में जब कैमरा कार्य करेगा तो हो सकता है कि आपका जो किरदार है वह कैमरे में आए ही ना, क्योंकि वहां पर रोशनी की प्रचुर आवश्यक मात्रा नहीं है। तो ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में उपाय यही है कि आपको लाइट की आवश्यकता होगी। उसी संदर्भ में इस बात को कहा गया है कि तकनीकी रूप से स्वीकार्य चित्र प्राप्त करने के लिए टेलीविजन कैमरों को उचित प्रकाश उपलब्ध कराना आवश्यक है। दूसरा, दर्शकों को टेलीविजन के पर्दे पर कोई वस्तु वैसा ही दिखलाना जैसा वह वास्तव में दिखती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका जो किरदार है वह वैसा ही दिखे जैसा वह दिखता है। नहीं, आपका जो करैक्टर है और जो उस करैक्टर को प्ले कर रहा है, उस करैक्टर का जो प्ले करने का तरीका है, ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पटकथा में एक राइटर ने लिखा है। ताकि उदाहरण के लिए, अगर किसी कमरे में प्रकाश नहीं है तो आप यह देखने योग्य नहीं होंगे कि कुर्सी, मेज या कोई अन्य वस्तु कैसी दिखती है। लाइट्स हमें यह भी जानने में मदद करते हैं कि घटना किस मौसम या दिन में किस समय की है, यह भी लाइट हमें बताता है। इसके अलावा तीसरा और जो मुख्य उद्देश्य है लाइट का, वह है घटना के माहौल को बनाना। देखिए, कई तरीके की लाइटें जो है सिनेमा में, टेलीविजन प्रोडक्शन में प्रयोग होती हैं, और हर एक लाइट का अपना अपना कह लीजिए कि अपना अपना मैसेज, संदेश देने का एक रंग है, और उन्हीं रंगों के अनुसार लाइटों को परिभाषित सिनेमा ने अभी तक परिभाषित किया है। तो आइए, ये तो हुई हमारी लाइटें, और लाइटों का मुख्य एक और कार्य है जिसके बारे में बताना बहुत आवश्यक हो जाता है, वह क्या है? जब आप कैमरे के सामने होते हैं, और जबकि फील और बैक तीन तरह की लाइटों के माध्यम से आपको, यानी कि सब्जेक्ट को, यानी कि जो जिस पे शूटिंग किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के ऊपर शूट किया जा रहा है और उस समय जिस किरदार के ऊपर शूट किया जा रहा है, जब स्टूडियो का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो मुख्यतः तीन प्रकार की लाइटों का प्रयोग करते हैं, और इन तीनों लाइटों के अपने अपने कार्य हैं। जब स्टूडियो में सामने बैठा जर्नलिस्ट समाचार को बांचता है, समाचार को बोलता है, तो उसके चेहरों पे पड़ने वाली परछाइयाँ, जैसे आपकी आँख की परछाई पड़ेगी, आपके बालों की परछाई पड़ेगी, और उसको हटाने के लिए फिल लाइट का उपयोग किया जाता है। और वैसे ही जो बैक लाइट होती है वो पीछे, जब आपका सब्जेक्ट न्यूज़ पढ़ रहा है, अगर बैक लाइट नहीं होगी तो उसका जो बैकग्राउंड का डिस्टेंस, स्वयं का डिस्टेंस जो बैकग्राउंड से है, वह बिल्कुल सेपरेट दिखाई नहीं देगा। दर्शक को, सामने बैठे दर्शक को टेलीविजन पे जो 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 दर्शक या जो श्रोता उसको देख रहा है और सुन रहा है, उसको ये लगेगा कि ये जो व्यक्ति विशेष है वह पीछे वाली दीवार से चिपका हुआ बैठा है। तो जो बैक लाइट है वह सेपरेशन का बड़ा कार्य करती है कि मुख्य वस्तु को आपकी बैक ड्रॉप से अलग करने का कार्य करती है। तो लाइट का यह भी एक मुख्य कार्य है। आइए अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग माइक्रोफोन को लेकर के, कि माइक्रोफोन किस तरह से कार्य करते हैं और माइक्रोफोन की आवश्यकता क्यों पड़ी रिकॉर्डिंग के लिए या शूटिंग के लिए। देखिए, सीधा संबंध माइक्रोफोन फोन से है कि जिस तरीके से लाइट आपको विजुलाइज करती हैं, सब्जेक्ट को विजुलाइज करती हैं, शूटिंग में हेल्प करती हैं, अलग अलग लोकेशन पे हम लोगों को लाइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कैमरा कम लाइट में कार्य नहीं करता है तो उसको एडिशनल लाइट देनी होती है। इसी तरीके से माइक्रोफोन के बहुत सारे कार्य हैं। अब मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वो भी कोई ना कोई माइक्रोफोन है, उसके द्वारा हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो माइक्रोफोन करता क्या है? अनेक अवसरों पर बोलने के लिए आपने लोगों को माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि वास्तव में हम माइक्रोफोन का उपयोग करते क्यों हैं? कुछ प्रश्न मना क्यों हैं? तो उसका उत्तर यह बनेगा कि जिस तरह आपने जाना कि कैमरा दृश्य को विद्युत संकेतों में बदलता है, उसी तरह माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा या ऑडियो सिग्नल में बदल देती है या परिवर्तित कर देती है। लेकिन जो ध्वनि हम निकालते हैं वह स्वभावतः बहुत कमजोर होती हैं, अतः इसे लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। इसीलिए इन ध्वनि संकेतों का विस्तार मतलब एम्प्लीफिकेशन करते हैं और लाउड स्पीकर तक भेजते हैं, जो इसे पुनः श्रव्य ध्वनि में बदल देता है। तो ये सारा काम माइक्रोफोन्स करते हैं, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग। इसके अलावा विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रोफोन होते हैं। देखिए, ट्रांसमिटिंग नहीं, ओनली रिसीविंग। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोफोन सिर्फ रिसीव करते हैं आवाज को, ध्वनि को रिसीव करते हैं, और लाउड स्पीकर उसको ट्रांसमिट कर देता है, या फिर आपके पास में रेडियो होगा वो आपकी आवाज को ट्रांसमिट कर देगा। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रोफोन होते हैं। एक समाचार एंकर की आवाज लेने के लिए, टेनिस मैच की ध्वनि पकड़ने के लिए, या एक रॉक कंसर्ट की रिकॉर्डिंग के लिए अलग अलग माइक्रोफोन या माइक्रोफोन सेट की आवश्यकता होती है। तो आप अब समझ गए होंगे कि अलग अलग जगहों पर, समय, परिस्थितियों के अनुसार माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। माइक्रोफोन के प्रकारों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह है साउंड रिकॉर्डिंग को समझना, किस तरीके से साउंड रिकॉर्डिंग कार्य करती है। देखिए, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जबकि मुद्रित माध्यम दृश्य सामग्री पर निर्भर होते हैं। वहीं टेलीविजन में दृश्य के साथ रेडियो की निजी तत्कालिकता सम्मिलित होती है। यही दृश्य श्रव्य चरित्र को विश्वासोत्पादक ढंग से यथार्थ के संप्रेषण की शक्ति देता है। मतलब कि टेलीविजन पर समाचार देखना, टेलीविजन पर नाटक का देखना, टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रम देखना, टेलीविजन पर सिनेमा देखना क्या करता है? टेलीविजन पर सिनेमा देखने का कार्य यह है कि आप दिमाग से सिर्फ ये कर रहे हैं कि तस्वीरों को देख करके समझने भर का कार्य कर रहे हैं, जबकि अभी मैं आपसे रेडियो पे बात कर रहा हूँ, तो आप अभी यहाँ पे कई सारे कार्य कर रहे हैं। एक तो मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, उसके बाद उन छवियों को अपने दिमाग में बना रहे हैं, और उन छवियों को बनाने के बाद में उनको समझ रहे हैं। संचार की यह सबसे बेसिक और आम प्रक्रिया है। इसी तरीके से आप दुनिया में कुछ भी चीज समझते या ग्रहण करते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने उस चीज को देखा और मैंने समझ लिया, तो नहीं। आप किसी भी चीज को देखेंगे या फिर किसी शब्द को सुनेंगे, क्योंकि शब्द के बाद में छवि निर्माण करनी होती है और आपको एक प्रक्रिया में जुड़ना पड़ता है। टेलीविजन में आपको ना तो छवि निर्माण करनी है, सिर्फ उनको देखना है, सुनना है, और क्योंकि छवियां वहां बन ही रही हैं और आप उसे सीधे आत्मसात कर ले जाते हैं, ग्रहण कर ले जाते हैं। यही दोनों जो सामाजिक अंतर है दोनों तकनीकों का, वह यही सामाजिक अंतर है। और टेलीविजन ज्यादा लाइव, ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा जीवंत रेडियो की तुलना में रहा है। इसीलिए टेलीविजन निर्माण प्रक्रिया या टेलीविजन के जो सेट्स हैं भारत में काफी देरी से आए, लेकिन इनका एक्सेप्टेंस दुनिया भर में या देश में रेडियो की तुलना में बहुत तेजी से हुआ और बड़े व्यापक वर्ग तक बहुत तेजी से यह माध्यम पहुंचा। जब साउंड की बात करते हैं तो एक विशेष माइक्रोफोन का चयन या कोई अन्य ध्वनि इनपुट की हम लोग बात करते हैं, जब हम साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं, तब एक माइक्रोफोन या अन्य ध्वनि स्रोतों के कमजोर संकेतों को पुनः प्रसंस्करण हेतु विस्तारित करता है। इसके अलावा वॉल्यूम का नियंत्रण तथा ध्वनि की गुणवत्ता सुधारता है, और अंतिम दो या अधिक ध्वनि स्रोतों से आने वाली ध्वनियों को मिलाने का कार्य या एकीकृत करने का कार्य भी साउंड रिकॉर्डर बड़े पैमाने पर करता है। तो आज हम लोग जो बड़ी और व्यापक चर्चा कर रहे थे, वह कर रहे थे हम लोग टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण को लेके, जहां पे हमने तीन चीजों को समझने की कोशिश की। पहला, टेलीविजन की विभिन्न अवस्थाएं, जिनको हम प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा, टेलीविजन में प्रयोग होने वाले कैमरे के फंक्शन के बारे में, उनके कार्य के बारे में। तीसरा, हमने लाइट के बारे में चर्चा करी, लाइट कितने प्रकार की होती हैं, और अंतिम माइक्रोफोन, हमने माइक्रोफोन के बारे में चर्चा की। और इस माइक्रोफोन के अंतर्गत हमने चर्चा करी कि साउंड रिकॉर्डर क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, और पूरे टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण में एक रिकॉर्डर किस तरह से कार्य करता है। तो श्रोताओं, मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने जानकारी साझा की है वह आपके लिए लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।